وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. آیت نمبر 7 سورت ابراہیم میں اللہ رب العزت شکر اور ناشکری کے نتائج بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ, اور جب تمہارے رب نے سنا دیا, اور جب تمہارے رب نے جو ہے وہ آگاہ کر دیا, خبردار کر دیا. کیا خبردار کیا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ, اگر تم شکر کرو گے. تو یہ شرط ہے کہ اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے, لَأَزِيدَنَّكُمْ, تو البتہ میں ضرور بضرور دوں گا تم کو, میں تم کو زیادہ نوازوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم کفر کرو گے. اب یہاں پہ شرط کیا ہے؟ انکار. اگر تم انکار کرو گے تو اِنَّ عَذَابِ لَشَدِید, تو میری سزا جو ہے وہ بہت سخت ہے. تو یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت جو ہے لوگوں کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہماری نعمتوں کا حق پہچان کر صحیح طرح اس کو استعمال کرو, اور ہمارے احکام کے مقابلے میں اگر تم جو ہے وہ سرکشی اختیار کرتے ہو, کبر اختیار کرتے ہو, تو کیا ہوگا کہ پھر جو ہے وہ میرا عذاب جو ہے وہ نہ صرف عذاب ہوگا بلکہ سخت عذاب ہوگا. تو یہاں پہ جو تعزنہ ہے, عام طور پہ اگر آپ دیکھیں تو تعزنہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ اذن دینا, اجازت دینا. لیکن تعزنہ جو ہے یہاں پر اس کے معنی کیا ہے؟ کہ تمہارے رب نے اپنے وعدے کے ساتھ تمہیں یہ آگاہ کیا, تمہیں خبردار کیا. اور اس کے معنی بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ قسم کے معنی بھی ہو سکتے ہیں. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ, کہ تمہارے رب نے جو ہے اپنی عزت, جلال اور کبریائی کی قسم کھا کر یہ بات کہی. تو تَأَذَّنَ جو ہے یہ عام معنی میں یہاں پر استعمال نہیں ہوا. یا تو یہ ہے کہ تمہارے رب نے خبردار کر دیا, آگاہ کر دیا, اور یا پھر یہاں پر اس کے معنی کیا ہے کہ تمہارے رب نے اپنے جلال اور عزت کی قسم کھا کر ایک بات بتائی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال اور اپنی عزت کی قسم کھا کر کیا بات بتائی, کس چیز پر جو ہے وہ توجہ دلائی. اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ بھی اپنی زندگی میں شکر گزاری کی روش پر چلتے ہیں, جو شکر گزاری اختیار کرتے ہیں, تو اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی تعداد میں, ان لوگوں پر اپنے فضل اور عنایات میں برابر اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں. اور اگر ناشکری کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے. اور آپ دیکھیں کہ رب جو ہے نا پالنہار, اور ایک دانے کو جو ہے وہ ترقی دے کر جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچانے والا, ایک نطفہ حقیر کو ترقی دے کر جو ہے وہ ایک جیتا جاگتا انسان بنانے والا, تو ہاں تو ذرے کو کمال جو ہے وہ عطا دینے والا, تو وہی تمہارا رب جو ہے وہ تمہیں عطا بھی کر سکتا ہے اور تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے. اور ناشکری کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ جو موجودہ نعمتیں ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں, چھین لی جاتی ہیں, بلکہ مزید اس کی سزا الگ ملے گی. جیسے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا, سائل, سوالی, آپ نے اس کو ایک کھجور عطا کی, اس نے نہ لی یا پھر پھینک دی. پھر دوسرا سائل آیا, اس کو بھی آپ نے ایک کھجور دی, وہ بولا سبحان اللہ تمرتن من رسول اللہ, کہ اللہ کی طرف سے مجھے کھجور, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھجور دی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہدیہ ہے, تبرک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی کو حکم دیا کہ ام سلمہ کے پاس جو 40 دینار ہیں وہ بھی اس شکر گزار سائل کو دلوا دے. پھر اسی طرح جو ہے شکر اور احسان شناسی جو ہے اس میں بڑی تاثیر ہے, یہ اس سے بھلائی بحال رہتی ہے اور مزید بھلائیاں جو ہیں وہ شکر گزاری کی وجہ سے جو ہے وہ انسان اپنے اندر مزید नेमतों को, नेकियों को अपने अंदर जज्ब करता चला जाता है। जैसे आप इस हदीस से भी अंदाजा कर सकती हैं कि नेमतों की कदर करना और नेमतों की कदर ना करना, इससे जो है दुनिया में भी उसके नताइज मिलते हैं और आखिरत में तो मिलकर रहेंगे ही। मसलन आप ये हदीस सुनिए कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह नो कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में 3 आदमी थे, एक कोड़ी, एक गंजा और एक अंधा। अल्लाह ताला ने उन्हें आजमाना चाहा और इनकी तरफ एक फरिश्ता भेजा। फरिश्ता पहले कोढ़ी के पास आया और कहने लगा, तुम क्या चाहते हो, अच्छा रंग और अच्छी जिल्द? क्योंकि लोग मुझसे नफरत और कराहत करते हैं। फरिश्ते ने इस पर अपना हाथ फेरा तो इसका रंग और जिल्द दुरुस्त हो गई। फिर फरिश्ते ने पूछा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? वो कहने लगा, ऊंट। फरिश्ते ने कहा, इसे 1 10 माह की ऊंटनी मुहैया कर दी और कहा कि अल्लाह इसमें बरकत देगा। फिर वो गंजे के पास आया और कहा, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, यही कि मेरा गंज जाता रहे और अच्छे बाल उग आए। फरिश्ते ने इस पर हाथ फेरा, वो तंदुरुस्त हो गया और अच्छे बाल उग आए। फिर इससे पूछा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? गंजे ने कहा, गाय। चुनाचे फरिश्ते ने उसे एक हामला गाय मुहैया कर दी और कहा, अल्लाह इसमें बरकत देगा। फिर फरिश्ता अंधे के पास आया और पूछा, तुम क्या चाहते हो? इसने कहा, यही कि ये मेरी बिनाई मुझको मिल जाए। फरिश्ते ने इसकी आंखों पर हाथ फेरा तो वो बीना हो गया, देखने लगा। फिर इससे पूछा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? इसने कहा, बकरियां। चुनाचे फरिश्ते ने उसे एक हामला बकरी मुहैया कर दी और कहा, अल्लाह इसमें बरकत देगा। कुछ मुद्दत गुजरने के बाद कोड़ी के पास ऊंटों का, गंजे के पास गाय का और अंधे के पास बकरियों का बहुत बड़ा रेवड़ बन चुका था। अब फरिश्ता फिर इनके पास इंसान की शक्ल में आया। पहले कोड़ी के पास गया जो उसका मरीज था और कहा कि मैं मोहताज आदमी हूँ, मेरा सब सामान जाता रहा, अब अल्लाह की और इसके बाद तेरी मदद के बगैर कहीं नहीं मैं पहुंच सकता। मैं तुमसे उस अल्लाह के नाम पर सवाल करता हूँ जिसने तेरा रंग और जिल्द अच्छी कर दी और तुझे बहुत सा माल दिया, एक ऊंट मुझे भी दे दो कि मैं अपने ठिकाने पर पहुंच सकूं। वो कहने लगा, मैंने तो बहुत लोगों का कर्ज देना है। फरिश्ते ने कहा, मैं तुझे पहचानता हूँ, तू कोड़ी था, लोग तुझसे कराहत करते थे और तू मोहताज था और अल्लाह ने तुम पर मेहरबानी की और ये सब कुछ अता किया। कोड़ी कहने लगा, वाह, मुझे तो ये सब कुछ बाप दादा की विरासत से मिला है। फरिश्ते ने कहा, अगर तुमने झूठ बोला है तो अल्लाह तुझे तेरी पहली हालत पे लौटा दे। फिर वो गंजे के पास गया, इससे भी बिल्कुल वैसे ही सवालों जवाब हुए जैसे कोड़ी के जो मरीज था जो ठीक हो चुका था उससे हुए थे। उसे भी फरिश्ते ने मिलाकर यही कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुझे अपनी पहली हालत में फेर दे। फिर इसके बाद फरिश्ता अंधे के पास आया और वैसे ही सवाल किया जैसे कोड़ी और गंजे से किया था। अंधा ये सवाल सुनकर कहने लगा, वाकई मैं अंधा था, अल्लाह ने मुझे बिनाई बख्शी, मैं मोहताज था, अल्लाह ने मुझे मालदार कर दिया। अब तुमने मुझसे इसी अल्लाह के नाम पर सवाल किया है, जो कुछ तुम चाहते हो ले लो, मैं रोकूंगा नहीं। फरिश्ते ने कहा, मैं मोहताज नहीं, फरिश्ता हूँ, अपनी बकरियां अपने ही पास रखो, अल्लाह ने तुम 3 आदमियों को आजमाया था, अल्लाह तुझसे खुश हो गया और तेरे दोनों साथियों कोड़ी और गंजे से नाराज हुआ। ये बुखारी की हदीस है। इससे क्या बात पता चलती है कि शुक्रगुजारी की रविश जो है ये अल्लाह को बहुत पसंद है। और जो है बीमार हैं तो सेहत मिल गई, बे औलाद थे तो अल्लाह ने औलाद दे दी, जॉब नहीं थी तो अल्लाह ने जॉब दे दिया, रिश्ता नहीं हो रहा था फिर रिश्ता हो गया, है ना, बिन शौहर के थे फिर अल्लाह ने शौहर अता कर दिया, घर नहीं था अल्लाह ने घर दे दिया, अल्लाह ने दोस्त नहीं थे दोस्त दे दिए, सोसाइटी में तारुफ करवाया फिर अच्छे दोस्त दे दिए। तो क्या करना चाहिए? और भी सारी नेमतों का सोच सोच कर जो है वो शुक्र अदा करना चाहिए। नशुक्री की रविश जो है दुनिया में भी उससे जो है वो नेमतें छीनती हैं और आखिरत में अल्लाह ताला कहते हैं मेरा अजाब सख्त होगा। इसी तरह नशुक्री का अंजाम एक और हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दोजख दिखाई गई, इसमें औरतें ज्यादा थीं जो कुफ्र करती हैं। सहाबा ने कहा, क्या वो अल्लाह का कुफ्र करती हैं? फरमाया, नहीं, वो खावन की नाशुक्री करती हैं और एहसान फरामोश होती हैं। अगर तुम किसी औरत से उम्र भर भलाई करो फिर वो तुम में से किसी में कोई नागवार बात देखे तो कह देगी कि मैंने तुझसे कभी कोई भलाई देखी ही नहीं। ये भी बुखारी की रवायत है। तो मानी क्या है इसके भी, क्योंकि इंसान मियाँ बीवी का रिश्ता और ताल्लुक बहुत करीबी है ना, जैसे जिस्म का और लिबास का। तो मियाँ बीवी जो नान नफका और घर और पूरी औरत की जरूरियात की कफालत करता है, उसका कफील होता है, दिन रात जो है वो खिदमत करता है औरत की। क्योंकि हमारे यहाँ इस्लाम में क्या है कि औरत के जिम्मे नहीं है कि वो कमाई करे, है ना, मर्द की जिम्मेदारी है कि वो मर्द बनकर जो है वो कमाई करे और अपने बच्चों की और बीवी की कफालत करे। और फिर ये कि घरेलू जिंदगी में नशेबो फराज, ऊंच नीच हो ही जाती है, कभी शौहर की जॉब नहीं है, कभी पैसे थोड़े हैं, कभी सब्जी है कभी नहीं है, कभी गोश्त है कभी नहीं है ना, घर में कमी बेशी होती है ना चीजों में। तो उसमें हमें अपने रवैये को देखना चाहिए, कभी हमें शौहर वक्त देता है कभी नहीं देता, कभी वो आपको घुमाने लेके जाता है कभी नहीं लेके जाता। तो उस वक्त हम क्या कहते हैं कि वो आके जब खाना मांगता है, हम क्या कहते हैं, कुछ सब्जी ला के दी थी जो मैं पकाती, क्या पकाऊं, कुछ था ही नहीं जो मैं पकाती, है ना, कभी लेके ही नहीं गए, कभी कभी आपको मेरा ख्याल ही नहीं आया, है ना। दूसरों के शोहरों को का सुनना, दोस्तों से दूसरों की कहानियां सुन सुन के अपने शोहरों का दूसरों के शोहरों से जायजा लेना, उनके साथ उनका जो है वो मुआजना करना, ये तो अच्छी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने हर आदमी को जो है वो मुख्तलिफ औसाफ से नवाजा है, उसको मुख्तलिफ खूबियां दी हैं, कुछ कमजोरियां भी हैं। और मैं तो कहती हूँ दूसरों के शोहरों से मुकाबला करना तो दूर की बात है, सगे बाप और भाई से भी नहीं करना चाहिए। बाप बाप है, भाई भाई है, शोहर शोहर है ना। तो बहुत से लोग जब अपने वालदैन के घर में होते हैं तो वालदैन का घर तो वो घर होता है जहां पे खूबियों को उछाला जाता है और जो खामियां होती हैं उनको छुपाया जाता है ना। और अगर बेटी कुछ नहीं भी कर रही तो अभी छोटी है और अभी इसका होमवर्क बहुत है और बेचारी थक गई है, और दरवाजा बंद कर दे थोड़ा और आराम कर ले। लेकिन जब शादी हो जाती है, आप अपने घर के हो जाते हैं, आप दूसरे घर चले जाते हैं, तो उस वक्त हालात एकदम नई करवट लेते हैं और उस वक्त जो है रिश्ते भी बदल जाते हैं ना। और उस वक्त फिर इंसान जो है, बहुत से लोग जो है वो बहुत जल्दी परेशान होते हैं और एकदम जो है मसाइल का शिकार होते हैं और मायूस होते हैं, बददिल होते हैं, बद इखलाक बनने लगते हैं, बदगुमान होते हैं। तो नहीं, क्या करना है कि शुक्र गुजारी की रविश जो है वो इख्तियार करनी है। क्योंकि कितनी औरतें हैं, कितनी लड़कियां हैं, उनके बालों में चांदी की तरह उनके बाल सफेद हो गए, चांदी चमकने लगी है, लेकिन उनकी शादियां नहीं हुई। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अल्लाह ताला ने शौहर दिया, घर दिया, फिर उस शौहर से औलाद दी, और फिर इंसान जो है वो अपने आप को कुछ समझे और शौहर की इज्जत ना करे, उससे मोहब्बत ना करे, उसकी जो गलतियां कमजोरियां हैं उससे सरफे नजर ना करें। शौहर की भी यही जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अपनी बीवी के साथ जो है वो हुस्ने सलूक करे, उसकी जो अच्छी खूबियां हैं उसका मोतरिफ हो, जो उसकी कमजोरियां हैं उससे सरफे नजर करे, और दूसरों की औरतों से जो है ना कभी भी अपनी बीवी का मुकाबला नहीं करना चाहिए। हाँ, नेकियों के मुकाबले में, नेकियों के मामले में हम सबको देखना चाहिए कि नेकियों में कौन आगे है। दुनिया के मामले में हुसन, दौलत, कद, पैसे, घर, और ये घूमना फिरना और आना जाना, और ये तो सारे चंद रोजा जिंदगी का सामान है। असल तो ये है कि हम में से कौन जो है वो नेकियों की दौड़ में आगे निकलता है और फिर अपने शौहर के लिए बीवी और बीवी के लिए शौहर जो है नेकियों में उसका हरीस बनता है। मसलन वो वाली हदीस के जिससे हमें ये बात पता चलती है कि जब बेहतरीन जोड़ा कौन सा है कि खुद जागे और दूसरे को भी जगाए, नहीं उठता तो उसके ऊपर पानी के छींटे भी डाले, है ना, वही वाली बात के जाके अब छींटे आप डाल लेना शुरू कर दें, है ना, पहले तो बताना, तरगीब देना, और फिर ये भी मोहब्बत का ये अंदाज। तो ये है असल बात कि वَإِذْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ, और तुम्हारे रब ने खबरदार कर दिया था कि अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे لَأَزِيدَنَّكُمْ, तो मैं तुम्हें जो है वो और ज्यादा दूंगा, जरूर बजरूर ज्यादा दूंगा। وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ, और अगर तुमने कुफ्र किया, अगर तुमने इनकार किया, इन्ना अजाबी लशदीद, तो मेरा अजाब जो है वो बहुत ही सख्त है। फिर फरमाया فَقَالَ مُوسَى, और कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, इन तकफुरू, ए बनी इसराइल के लोगों, अगर तुमने कुफर किया, अंतुम तुम व मन फिल अर्दी जमीआ, और तुम और वो सब जो के जमीन में हैं वो भी सब कुफर करें, यानी तुम اور وہ سب جو زمین میں ہیں کیا کریں؟ تکفرو، وہ کفر کریں. فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. اصل میں یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ایک واقعہ جو ہے وہ سامنے رکھ کر اللہ رب العزت جو ہیں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اہل مکہ جو تھے نا وہ نشکری کر رہے تھے، وہ جو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، آپ کی دعوت کا انکار، قرآن کا انکار، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس سورت کے شروع میں ہی یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان پر قرآن نازل کیا تاکہ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تو اپنے احسان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور لوگوں نے اس کی جب ناقدری کی، تو اللہ تعالیٰ یہاں بنی اسرائیل کا یہ واقعہ رکھ کر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کیا تم بھی اللہ کی نعمت اور اس کے احسان کا جواب اسی طرح کفر سے دینا چاہتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے جو ہے وہ دیا تھا. اور صحیح مسلم میں جو حدیث قدسی ہے اس کے الفاظ کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پیچھے جنوں ان سب کے سب اعلیٰ درجے کے متقی بن جائیں تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا، اور اگر سب کے سب اگلے پچھلے جنوں ان سے ایک بہترین شخص ہو جائیں، اس جیسے ہو جائیں، تو اس سے میری بادشاہی میں ذرہ برابر بھی کمی واقعہ نہیں ہوتی. تو اگر کوئی شخص ناشکری کرتا ہے، اگر کوئی شخص اللہ کا انکار کرتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہی ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بگاڑ نہیں پڑتا. تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العزت یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ بھی شکر کرے گا تو اس کو اس کا اپنا فائدہ ہوگا، اور جو شخص بھی ناشکری کرے گا تو اس کو خود اپنا ہی اس کا جو ہے وہ نقصان ہوگا. تو اصل بات کیا ہے کہ جو حمد اللہ کی بیان کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی بے نیاز ہے، جو نہیں کرتا تو اللہ اس سے بھی بے نیاز ہے. اور اگر کوئی اللہ کی حمد نہیں کرتا، مسلمان نہیں بنتا، توحید پرست نہیں بنتا، تو نہ بنے کیوں؟ سارے فرشتے، کائنات کا ذرہ ذرہ، آسمان و زمین، سورج، چاند، ہوائیں، پھل پھول، موسم، سب اللہ کی حمد اور کبریائی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. یوں سب بے ہو وہ تسبیح کرتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ جو ہے وہ محمود ہے. یعنی کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، خود وہ جو ہے وہ تعریف کے لائق ہے. پھر اللہ رب العزت جو ہیں فرماتے ہیں اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، کیا تمہیں نہیں پہنچی خبریں یا حالات ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزرے تھے؟ اور اب یہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی تقریر ختم ہو چکی ہے، اب کفار مکہ جو ہے ان سے براہ راست بات چیت شروع ہوئی کہ اے اہل مکہ، کیا تمہیں پہلی گزری ہوئی قوموں کی خبریں نہیں پہنچی؟ نبأ، ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا نبأ بڑی خبر کو کہتے ہیں. وہ کون سی قومیں تھیں؟ قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح، عاد اور ثمود. والذین من بعدہم، اور ان کے بعد آنے والی بھی بہت سی قومیں. لا یعلمہم الا اللہ، اور نہیں ان کو کوئی جانتا مگر اللہ. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر بھی جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تم غور تو کرو، تم سوچو تو صحیح کہ اے اہل مکہ، تم سے پہلے بہت سی ایسی قومیں جو ہیں وہ روئے زمین پر گزری ہیں، اور وہ قومیں بڑی عظیم الشان تھیں. وہ قومیں جو تھیں ان کی بڑائی کے، ان کے فن کے، ان کی تہذیب و ثقافت کے جو تھے وہ دنیا میں ڈنکے جو تھے وہ بجتے تھے. وجاب الصخر بالواد، وثمود الذین جابوا الصخر بالواد. اور قوم نوح اور قوم عاد، تو یہ لوگ جو تھے بڑے عظیم جو یہ لوگ تھے، اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان قوموں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، اپنے پیغمبر کا انکار کیا. اور پھر ان کے بعد جو ہے اور بھی بہت سی قومیں جو ہیں وہ آئیں، صرف یہی نہیں تھے بلکہ جو تھے اور بھی بہت سی ایسی قومیں تھیں جنہوں نے کیا کیا کہ اپنے پیغمبروں کا جو ہے وہ انکار کیا. تو وہ قومیں جو تھیں لا یعلمہم الا اللہ، ان کو، ان قوموں کا شمار जो कि बाद में कौमें ऐसी थी जिन्होंने इनकार किया, उनको कोई नहीं जानता। कौन जानता है? मगर सिर्फ जो है वो अल्लाह जानता है। तो इन कौमों के पास जब अल्लाह के रसूल आए तो इनका मामला क्या था? जाअतहुम रुसुलहुम बिलबैनात, कि जब इनके पास कौन आया? रुसुलहुम, उनके रसूल, बिलबैनात, साफ साफ बातें लेकर, खुली खुली निशानियां लेकर इनके पास अल्लाह के रसूल आए, तो इन लोगों ने जो है इनका मामला क्या था? इनका मामला बड़ा ही अजीब था। उन्होंने क्या किया? फरद्दू अईदियहुम, तो फिर उन्होंने जो है वो दबा लिए। फरद्दू, फिर उन्होंने जो है वो फेर लिए। अईदियहुम, अपने हाथों को, फी अफवाहिहिम, अपने मुंह में। यहां पर फरद्दू अईदियहुम फी अफवाहिहिम, ये जो आयत का हिस्सा है, मुफस्सरीन ने इसके मुख्तलिफ मानी बयान किए हैं। तो कैसे इसके मानी जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, इस सिलसिले में आप ये बात देखें कि आप फरद्दू, फिर उन्होंने लौटा दिए, फिर उन्होंने जो है वो दबा लिए, फिर उन्होंने लौटाए। तो उन्होंने जो है वो क्या लौटाया? इस सिलसिले में मुफस्सरीन जो है वो ये कहते हैं कि ऐदियहुम, अपने हाथों को, तो ऐदियहुम की जो जमीर है और फी अफवाहिहिम, हिम की जो जमीर है, ये दोनों जमीरें कफार की तरफ आप लौटाएं। कि जब रसूल मौजजात लेकर आए, जैसे जो है वो किताबें भी मौजजे थे, या फिर वो नाका थी, या फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो दिए गए थे कि अंधे को ठीक करते थे, मुर्दे को जिंदा करते थे, जो वो जखीरा करते थे उसको बताते थे, फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो बैनात तिसआ, नौ निशानियां जो उनको देकर भेजा गया है ना, तो इस तरह पैगम्बरों को जो बड़ी बड़ी निशानियां देकर भेजा गया, तो लोगों ने किया क्या? तो बाद मुफस्सरीन ये कहते हैं कि ऐदियहुम और अफवाहिहिम की दोनों जमीरें जो हैं, इन जमीरों को कुफार की तरफ जो है वो लुटा दिया जाए। तो जब कुफार की तरफ इन जमीरों को लुटाएंगे, तो मानी क्या है? कि कुफार ने नबियों के साथ बड़ी बदसलूकी की, गुस्से से अपने हाथों को अपने मुंह में डाला। क्या मतलब? कि अपने हाथ जो थे अपने मुंह में डालकर उनको काटने लगे। जैसे कुरान में एक और जगह है ना कि अद्दू अलैकुमुल अनामिला मिनल गईस, के ये तो क्या करते हैं कि गुस्से से अपने हाथ जो है ये काटने लगे हैं, है ना। तो अंबिया की बातें सुनकर गुस्से की वजह से उन्होंने क्या किया कि अपने हाथ ही जो है वो काटने लगे। और ऐसा भी हो सकता है कि अंबिया की बातें सुनकर हैरत के तौर पर उन्होंने अपने हाथ अपने मुंह पर रख लिए, ठीक है ना, अपने हाथ अपने मुंह पर रख लिए। हैरत के तौर पर भी लोग कहते करते हैं ना ऐसे। और दूसरे इसके मानी मुफस्सरीन ये कहते हैं कि ये हो सकता है कि फरद्दू अईदियहुम, यहाँ पे हुम की जमीर कुफार के लिए है, फी अफवाह हिम, हिम की जमीर रसूलों की तरफ है, कि पहली जमीर को जो है वो कुफार के लिए ले लीजिए, हुम की जो है, और दूसरी को जो है वो रसूलों की तरफ ले जाइए। तो फिर इसका तर्जुमा क्या होगा कि पैगंबर की बातें सुनकर उन्होंने जो थे वो अपने हाथ जो थे पैगंबरों की मुंह की तरफ लेकर गए, है ना, पैगंबरों की मुंह की तरफ लेकर गए, और क्या कहा उन्होंने कि जो है वो तुम हमसे क्या तवक्को करते हो, यानी हम तुम्हारी किसी बात को जो है वो नहीं मानेंगे। या फिर आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि अपने हाथ जो थे पैगंबर के मुंह की तरफ ले जाकर कहा चुप करो। फरद्दू अईदियहुम फी अफवाहिहिम, पैगंबरों के मुंह की तरफ उनके हाथ अपने हाथों को ले जाकर जैसे खामोश उनको जो है वो करवा दिया। तो बाज वो कहते हैं कि उनको गोया के चुप रखने को कहा, और दूसरा उनके मुंह की तरफ हाथ करके कहा कि हमसे तुम क्या तवक्को रखते हो, ये बात भी जो है वो मुराद हो सकती है। और या फिर इससे मुराद जो है वो मुफस्सरीन जो है वो क्या कहते हैं कि दोनों जमीरें जो है ना वो रसूलों की तरफ है। दोनों जमीरें कौन सी जमीरें? अब ऐदियहुम की और अफवाहें इनकी, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये दोनों जमीरें रुसल की तरफ हैं तो ये सख्त गुस्ताखी थी कि गुस्ताखाना तौर पर अंबिया के हाथ पकड़कर उन्हीं के मुंह में डाल दिए, उन्हीं के मुंह में ठोंस दिए, जैसे किसी के हाथ ही उसके मुंह में डाल दिए जाए गुस्से में या फिर मजाक उड़ाने की शक्ल में। तो दोनों बात ही हो सकती है। मुहावरा भी हमारे यहाँ बोला जाता है ना कि फलां शख्स की चीज उसने उसके मुंह पर दे मारी, है ना। तो यहाँ पर जो है दरअसल अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि कुफार ने पिछली कौमों में अंबिया से बदसलूकी की है, उनकी दावत को कबूल नहीं किया, उनके साथ बड़ी बेरुखी के साथ जो है वो पेश आए हैं। तो आप देखेंगी, आप मुख्तलिफ इस आयत का तर्जुमा देखने के लिए आप मुख्तलिफ कुरान खोल कर देखेंगी तो आपको इस तरह मुख्तलिफ तर्जुमे जो है वो मिलेंगे। लेकिन आपको इसलिए मैंने इस तरह से वजह से बताया ताकि आपको ये समझ आए कि फिर जो तर्जुमों में इख्तलाफ होता है उसकी रीजन क्या होती है, कि बाज़ ज़मीरें जो हैं उसमें ऐसा होता है कि इस बात की गुंजाइश होती है कि उसको दोनों तरह लिया जा सके, और बाज़ जब गुंजाइश नहीं होती तो सब लोग एक तरह का तर्जुमा करते हैं, है ना। तो गोया के एक तर्जुमा हमारे सामने ये आया कि उन्होंने काफरों ने अपने हाथ अपने मुंह में रख लिए और कहा कि हमारा तो सिर्फ एक ही जवाब है कि हम तुम्हारी रिसालत के मुनकिर हैं। दूसरा तर्जमा उन्होंने अपनी उंगलियों के साथ अपने मुंह की तरफ इशारा करके कहा खामोश हो जाओ और जो ये पैगाम तुम लेकर आए हो इनकी तरफ तवज्जो मत करो। या फिर ये है कि उन्होंने अपने हाथ अपने मुंह पर मजाक और ताज्जुब के तौर पर रखे, जिस तरह कोई शख्स हंसी जब्त करने के लिए ऐसा करता है ना, किसी को देख कर जैसे हंसता है तो फिर हाथ रखकर। या फिर ये है कि उन्होंने अपने रसूलों के मुंह पर रखकर कहा खामोश हो जाओ। और नंबर पांच क्या है, गजब के साथ उन्होंने गुस्से के साथ अपने हाथ अपने मुंह में ले लिए, जिस तरह मुनाफिकीन जो थे वो क्या करते थे कि उनका अमल क्या है, अद्दु अलैकुमुल अनामिना मिनल गैज़, सूरत आल इमरान आयत 119, कि वो तुम पर अपनी उंगलियां गैज़ो गजब से काटते हैं। तो इमाम शोकानी और इमाम तिबरी ने जो है वो इसी आखिरी मानी को तरजीह दी है। फ़क़ालू, और उन्होंने कहा काफरों ने, इन्ना कफरना, बेशक हम इनकार करते हैं, हम नहीं मानते, बिमा उर्सिल तुम बही, हम किसको नहीं मानते, जिस पैगाम के साथ तुम भेजे गए हो, बिमा जिस पैगाम के साथ, उर्सिल तुम बही, वो पैगाम देकर तुम्हें हमारी तरफ जो है वो भेजा गया है, व इन्ना लफी शक के मिम्मा, और बेशक हम जो है उस पैगाम की तरफ से शक में है, तदऊनना, तू हमको बुलाता है, इलेही उसकी तरफ मुरीब, और हम उसकी तरफ से कैसे शक में हैं, ऐसे शक में जो बड़ा ही जो है वो सख्त शक है, यानी खलजान होना, और ऐसा शक जिसमें इंसान जो है उसको बहुत ज्यादा जो है वो बेयकीनी की कैफियत उनके अंदर जो है, इंसान के अंदर जो है वो पैदा हो जाए। तो यहाँ पर जो है सिर्फ इतनी बात ही अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि उन्होंने नहीं कही शक ही नहीं बल्कि मुरीब भी। आपको पता है ना, शक आम होता है और रैब, ऐसा शक जिसके अंदर खटक हो, है ना, और उसका अगला दर्जा है। तो उन्होंने पैगंबरों को कहा कि ना सिर्फ हम तुम्हारी दावत का इनकार करते हैं बल्कि जो दावत, जो जो भी किताब, जो भी मौजात, जो पैगाम तुम अल्लाह का लाए हो और हमारे सामने पेश कर रहे हो वो तो हमारी समझ में नहीं आता, बहुत ही जो है वो सख्त इज़्तिराब है हमारे अंदर, हमारे अंदर एक खलबली है, परेशानी है जो तुम चीज पेश कर रहे हो। कालत रुसुलहुम, उनको उनके रसूलों ने कहा, अफिल्लाही शकुन, क्या अल्लाह के बारे में शक है, सोचे तो सही, क्या अल्लाह के बारे में शक है, फातिरिस समावाति वल अर्द, जो आसमानों और जमीन का खालिक है। यहाँ पे आप ये बात भी देखें कि खालिक जो है वो फातिर कहा, खालिक खलका से है कि किसी चीज का जो है वो वजूद में लाना, लेकिन फातिर जो है किसी चीज को तराश खराश के खूबसूरत बनाना, है ना, इतना खूबसूरत बनाना तराश खराश के, तो उसके लिए फातिर आता है। तो क्या तुम्हें उस अल्लाह के बारे में शक है जो आसमानों और जमीन का खालिक है? और आसमानों जमीन जो है इसके बारे में क्यों कहा अल्लाह ताला ने, क्योंकि आसमान और जमीन की पैदाइश कोई आसान चीज नहीं है, है ना, और ये आसमान और जमीन उनको अपनी रोजमर्रा जिंदगी में नजर भी आते थे। तो मौजे नबी कौन से पेश करते थे जो सबको जो है वो नजर भी आए, हर आंख उसको देख सके, एक देहाती की भी, एक शहरी की भी, एक पहाड़ी इलाके में रहने वाले की और एक मैदानी इलाके में रहने वाले की भी। और जब अल्लाह फातिर है आसमान और जमीन का, तो फिर होना क्या चाहिए कि उसी अल्लाह की बंदगी करनी चाहिए। यदउकुम, वो तुमको बुलाता है, लियगफिरा लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, ताकि वो तुम्हारे कसूर माफ कर दे। यहाँ पे जो है वो बड़ी खूबसूरत जो है वो बात बताई गई है कि अगर जो है तुम अल्लाह की दावत को कबूल करोगे तो उसका तुम्हें जो है वो बहुत फायदा होगा। और अल्लाह की दावत को कबूल करना क्या है? तौहीद इख्तियार करना, ईमान के रास्ते पे चलना। और जब इंसान एक अल्लाह की बंदगी करता है और सही मोमिन बन जाता है, और ईमान और ईकान का रास्ता जब इख्तियार करता है, तो ईमान लाने से पिछले तमाम गुनाह जो है वो माफ हो जाते हैं। आपको पता है ना कि जब वो एक सहाबी से कत्ल हो गया था, कत्ले खता, तो उन्होंने क्या कहा था? काश कि आज से पहले मैं मुसलमान ही ना हुआ होता। तो जब कोई कलबा पढ़ता है, मुस्लिम होता है, तो फिर उसके पिछले तमाम गुनाह जो है वो माफ हो जाते हैं। तो जब तुम ईमान लाओगे, जब तुम अल्लाह की बंदगी करोगे, तो पैगंबरों ने क्या कहा उनको? यदउकुम, वो अल्लाह तुम्हें बुलाता है, लियगफिरा लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, ताकि वो अल्लाह तुम्हारे कसूर तुमसे माफ कर दे। और आप देख लें कि आज भी हम जो गुनाहों की गठड़ियां जो हैं वो अपने कंधों पर और अपनी पीठ पर लादे हुए हैं, तो उनको माफ करवाने की एक ही शक्ल है कि ईमान ऐसा जो जीता जागता हो और सच्चा हो, जानदार हो, और फिर हम तौबा तुन्नुसूह करें, सच्ची तौबा, ताकि अल्लाह गुनाह माफ कर दे। व युअख्खिरकुम इला अजल मुसम्मा, और तुमको एक मुद्दते मुकर्रर तक मोहलत दे। तो अजल मुसम्मा से क्या मुराद है? एक, इसका मतलब यह है कि अफराद की मौत का वक्त, कि दुनिया में एक शख्स को अमल के लिए जो भी मोहलत मिली है तो वो है अजल मुसम्मा। और आप देखेंगे किसी के पास मोहलत थोड़ी होती है, किसी के पास मोहलत कम ज्यादा होती है ना? किसी को अल्लाह बचपन में ले जाता है, किसी को ऐन जवानी में, किसी को वो बुढ़ापा है और चारपाई पर जो है वो बैठा अपनी एड़ियों को रगड़ रहा है, लेकिन मौत उसके पास आती नहीं। तो अल्लाह ताला की जात बड़ी बेनियाज है कि वो जिसको चाहे और जब चाहे जो है वो जिंदगी दे, और जिसको चाहे और जब चाहे जो है वो मौत दे दे। तो दूसरे इसके मानी कयामत के हैं। कयामत का मतलब क्या है? कि अल्लाह ताला जो है जब कयामत लाएगा तो सब चीजें जो है वो कायनात की खत्म हो जाएंगी। तो ये जो है ना अजल मुसम्मा, ये इंफरादी तौर पर भी मोहलत है और इज्तमाही तौर पर भी, के इंफरादी तौर पर किसी को जीने की मोहलत मिलना, या किसी कौम को जो है वो उसके उठने और गिरने के लिए अल्लाह ताला के पास एक वक्त मुकर्रर है। एक अच्छी कौम अगर अपने अंदर बिगाड़ पैदा करती है, उसकी मोहलत अमल घटा दी जाती है। और अगर जो है वो बिगड़ी हुई कौम है, वो अपने अपने अंदर बुरे औसाफ को अच्छे औसाफ से वो बदल लेती है, तो अल्लाह ताला उसकी मोहलत अमल जो है वो बढ़ा देते हैं। और आप देखें कि एक फल है, अगर वो जो है वो सड़ रहा है और आप उसको फेंक देते हैं, अगर वो देर तक रहता है तो बहुत देर तक आप उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो जिस तरह सड़े हुए फल या सब्जी को हम फेंक देते हैं, इसी तरह अल्लाह वो कौमें जो अल्लाह की जमीन को जब जुल्म से भर देती हैं, तो अल्लाह उनको सफाए हस्ती से उठा लेते हैं। पालू, वो कहने लगे, इन अंतुम इल्ला बशरुम मिसलुना, तुम कुछ भी नहीं मगर वैसे ही इंसान जैसे कि हम। ये सख्त एतराज था जो हर दौर में कौमों को अपने रसूलों के बारे में रहा, और उन्होंने भी जो इल्जाम लगाया अपने पैगंबरों पर, तो क्या कि तुम तो हम जैसे ही इंसान हो। अब आप देखें कि आज भी लोग जो हैं वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था, वो नूर थे, है ना? और हालांकि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, अल्लाह नूरु समावाति वल अर्थ, अल्लाह ही जो है वो आसमान का और जमीन का जो है वो नूर है। दूसरी बात, बाज लोगों के बारे में जब बात करते हैं ना, तो उनको बशरी तकाजे और जो हाजतें हैं ना उनसे मुबर्रा करार देते हैं कि फलां जो है वो इतना अल्लाह का पहुंचा हुआ है, उसको भूख, वो खाता ही नहीं, वो सोता ही नहीं, उसने शादी भी नहीं की। तो जो ولایت کا معیار ہے نا اللہ کے ولی ہونے کا، اللہ کی قربت کا، تو وہ یہ نہیں ہے کہ انسان انسان نہ ہو، ہے نا، بلکہ کیا ہے کہ انسان ہو. اور انبیاء کے بارے میں بھی یہ بتایا کہ انبیاء جو معصوم عن الخطا، جو تمام انسانیت میں سب سے بہترین اور افضل تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے جس بھی رسول کو بھیجا تو اس کو انسان ہی بھیجا، یعنی ہم نے کسی فرشتے کو رسول نہیں بنا کر بھیجا. تو یہاں پہ بھی ان کا کیا اعتراض تھا، تم کچھ بھی نہیں ہو مگر ہم ہی جیسے انسان، کوئی فرشتہ ہوتا کوئی اور عجیب بات ہوتی. تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، تم چاہتے ہو کہ تم ہمیں روک دو، عَمَّا كَانَ اس سے کہ جس کی کانا یعبدو کرتے تھے عبادت، آباؤنا ہمارے باپ دادا، کہ تم ہمیں ان بستیوں ان ہستیوں کی، یعنی مختلف دور میں مختلف جو ہمارے باپ دادا تھے انہوں نے کچھ بتوں کی کچھ ہستیوں کی جو بندگی کی ہے، تم ہمیں ان سے روکنا چاہتے ہو. انتسدونا رکنا اور روکنا نا، پیغمبروں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم خود تو کر نہیں رہے اور ہمیں بھی جو ہے تم روک رہے ہو کہ ہم اپنے اباؤ اجداد جو ہیں ان کی جو ان کے بت تھے یا ان کی جو وہ شخصیتیں تھیں جن کے انہوں نے مختلف جن کو انہوں نے اپنا خدا بنا رکھا تھا، کہ تم ہمیں ان کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو. فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند، یعنی کوئی ایسی، یہاں پہ بے سلطان جو ہے ایسی ایسے دلیل اور برہان کے لیے یہ استعمال ہوا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہاتھوں سے ہم چھوئیں اور آنکھوں سے ہم دیکھیں اور ہمیں یقین آ جائے کہ واقعی تم جو ہے وہ تم اللہ کے پیغمبر ہو، تم اللہ کے رسول ہو. تو اب اللہ تعالیٰ جو ہیں ان لوگوں کا جو اعتراض جو ہے یہاں پہ نقل کر رہے ہیں، تو اس میں ہم سب کو کیا بات بتانا چاہتے ہیں، کیا بات بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا اعتراض کیا تھا، ایک یہ تھا کہ تم بشر ہو، دوسرا اعتراض یہ تھا اباؤ اجداد کی پوجا سے منع کرتے ہو، یعنی ان کی جو روایات تھیں یا ان کی جو رسمیں تھیں یا ان کے طور طریقے ان سے منع کرتے ہو، تیسرا اعتراض یہ تھا کہ لاؤ پھر بے سلطان مبین، اس کا فرشتوں نے یعنی جو ہے وہ رسولوں نے جو فرشتوں نے ان کو جواب دیا تھا اللہ کی طرف سے، تو انہوں نے رسولوں نے کیا جواب دیا، قالت لہم رسولہم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا، کن سے کہا، ہاں یہ جو تھے نا وہ قالو انا کفرنا، پیچھے آپ نے پڑھا نا جو انکار کرنے والے تھے، تو رسولوں نے کفر کرنے والوں سے کہا انہنو الا بشر مثلکم، واقعی ہم کچھ نہیں مگر تم ہی جیسے جو ہیں وہ انسان ہیں، انبیاء تمام بشر تھے. تمہارا یہ کہنا درست ہے، پیغمبروں نے کیا کہا، تمہارا یہ کہنا درست ہے کہ نہ تو ہم فرشتے ہیں اور نہ ہی کوئی ایسی مخلوق جس کے اندر جو ہے وہ نفسی تقاضے نہ ہوں، ہے نا، بلکہ کیا ہے کہ جسمانی دماغی اخلاقی معاشی معاشرتی ہر لحاظ سے ہم ایسے ہی ہیں جیسے کہ تم ہو، کہ مقام نبوت جو ہے یا منصب رسالت جو ہے یہ جو ہے وہ کس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، انسانوں کو عطا کیا ہے. تو انہنو الا بشر مثلکم، اور ساتھ ہی کیا کہا، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عباده، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے. معنی کیا ہے کہ بلا شبہ ہم انسان ہیں مگر اللہ نے تمہارے درمیان ہم کو علم حق بھی دیا، بصیرت کاملہ بھی عطا کی، اور تم میں سے انسانوں میں سے اللہ نے ہمیں جو ہے وہ منتخب کر لیا. تو یہ منتخب کرنا یہ اللہ کا منشا ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے. یمنو من احسان کرنا، یہ اللہ احسان کرتا ہے، من یشاء من عبادی اپنے بندوں میں سے جس پر یہ چاہتا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ کا اپنے بندوں پر خصوصی احسان ہے کہ انسان کو یعنی ابدیت جو ہے کس کے پاس ہے، یعنی بندے ہی کو اٹھایا اللہ تعالیٰ نے اور اس کو جو ہے وہ پیغمبر بنا دیا. تو یہ انہوں نے جو ہے وہ اس کا جواب دیا. اور تیسری بات انہوں نے کیا کہی کہ وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان، اور ہمارے لیے یہ ہے ہی نہیں، ہمارے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس کوئی سند کوئی معجزہ जो तुम देखना चाहते हो हमारे इख्तियार में नहीं है कि हम तुम्हें दिखाएं, इल्ला बिइज्निल्लाह, सवाए इसके के अल्लाह ही जो है ना वो चाहे, यानी अल्लाह की इजाजत के सिवा हम कोई मौजजा जो है वो तुम्हें दिखा नहीं सकते। तो मुराद क्या है कि मौजजे का सुदूर भी हमारे इख्तियार में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून, और अल्लाह ही पर अहले ईमान को भरोसा करना चाहिए। तो यहां पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या बात बता रहे हैं कि जब अल्लाह ताला ने हमें जो है वो पैगंबरों की जबान से ये बात कि अल्लाह पर हम सबको भरोसा करना चाहिए, किनको? अल मोमिनून, ईमान लाने वालों को। यहाँ पे तवक्कुल और ईमान ये दो अहम बातें हैं कि जब अल्लाह ताला किसी को तौहीद, ईमान, इकान की नेमत से नवाज देता है, फिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि वो अपने अल्लाह पर जो है वो भरोसा ना करे? तो फिर वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्लाह ही पर जो है वो भरोसा करते हैं, वो किसी और पर जो है वो भरोसा नहीं करते, है ना? तो अब आप देखें कि पैगंबर जो हैं वो ये बात बता रहे हैं कि अपनी मर्जी से कोई मौजजा दिखा नहीं सकते, और अल्लाह ने चुन लिया है और ईमान हमारे पास है, तो अब हम तुमसे डरेंगे नहीं, तुमने जो करना है कर लो, हमारा तवक्कुल तो अल्लाह पर है। वमा लना, और क्या हो गया है हमको, और हम क्यों ना करें, अल्लाह न तवक्कला अल्लाह ही, कि हम अल्लाह पर भरोसा ना करें। और हम क्यों ना अल्लाह पर भरोसा करें, वकद हदाना सुबुलना, जबकि हमारी जिंदगी की राहों में इसने हमारी रहनुमाई की है। वकद हदाना, और इसने जो है वो दिखाई है, इसने जो है बताई है, इसने रहनुमाई की है। हदा का आपने मतलब पढ़ा था ना, किसी को लुत्फ करम के साथ, नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ रास्ते पे ले जाना, चला देना, हदायत है ना। तो अल्लाह ताला ने जो है बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़े ही नरमी के साथ और बड़े ही प्यार के साथ हमें रास्ते दिखा दिए हैं। सुबुलना, सबील की जमा है सुबुल, कुशादा राह, और यहाँ पे कौन सी राह मुराद है? तौहीद की, इस्लाम की, हदायत की। कि हम जो हैं वो अल्लाह की बताई हुई राहों पर जो हैं वो चलने वाले हैं, और हमारा भरोसा अल्लाह पर है, और उस रात पर हम भरोसा क्यों ना करें जिसने इतनी खूबसूरत राह जो है हमें दिखाई है। और हकीकत यह है कि इस दुनिया में सबसे बेहतरीन रास्ता, सबसे खूबसूरत रास्ता, सबसे अच्छा रास्ता जो है वो हदायत का रास्ता है। और हदायत कौन सी? इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज मैंने तुम पर तुम्हारा दीन जो है वो मुकम्मल कर दिया। तो यहाँ पर भी अंबिया जो हैं वो ये बात बता रहे हैं कि हम जो हैं अल्लाह ताला पर भरोसा करेंगे, और अल्लाह ने हम पर बड़ा फजल किया है कि यहाँ हमें रास्ते दिखा दिए हैं। बाज मुफस्सरीन ये कहते हैं कि सुबुल से मुराद यानी दुनिया में जिंदगी बसर करने का रास्ता और आखरत में कामयाब होने का रास्ता, यानी गोया के अल्लाह ताला ने मनाफे दारैन के रास्ते बता दिए हैं। तो इसलिए जो है हम जो है वो अल्लाह पर ईमान भी लाएंगे, भरोसा भी करेंगे। और पैगंबरों ने क्या कहा? वला नसबिरन अला मा आज़ैतुमूना, और जो अज़ियतें तुम हमको दे रहे हो हम उन पर जरूर ब जरूर सब्र करेंगे। अब आप देखिए कि वो पैगंबर जिनके पास ना फौज थी, जिनके पास कोई जो है वो बचने के लिए कोई जगह भी नहीं थी, और वो पहाड़ बन गए अपने अमलों के लिहाज से, तो वो क्या करते हैं कि कुफार की शरारतें, उनका मजाक, उनकी बातें और उनकी हठधर्मी, उनका मौजजात का मुतालबा करना और उनका मजाक उड़ाना पैगंबरों का, और उसके लिए वो क्या कहते हैं कि हम तो जरूर ब जरूर जो है वो अल्लाह ताला पर जो ईमान लाए हैं तो अब हम उस ईमान को छोड़ेंगे नहीं, और हम जो है उस अल्लाह पर जो है वो इस्तकामत दिखाएंगे। जो तुम तकलीफें हमें पहुंचाओगे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और हो नहीं सकता कि सख्तियां देखकर हम तवक्कुल और इस्तकामत का रास्ता जो है वो उसको छोड़ दें। वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, और भरोसा करने वालों का भरोसा जो है वो अल्लाह ही पर होना चाहिए। गोया के जो भी ईमान लाया है, जिसका भी अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल है, जो भी सिराते मुस्तकीम दीन इस्लाम को अपनी जिंदगी का रास्ता बना चुका है, तो उस पर तकलीफें मुसीबतें परेशानियां तो आएंगी ही। जहां फूल वहां कांटे, जहां धूप वहां छांव, छांव वही होती है ना, जहां जिंदगी वहां मौत, जहां सुख है वहां दुख तो जरूर है। तो जब अल्लाह ने इतना कुछ हमें नवाजा है और जो मुसीबतें आ रही हैं, तो हम इस पे जरूर बजरूर जो है वो सब्र करेंगे। तो इससे क्या बात पता चलती है कि तुम दिए वादे मुखालिफ से न घबरा ए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और आखिर में जो पैगाम उन्होंने दिया है, यानी ये पैगम्बरों, पूरे पैगम्बरों को जो इकट्ठा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखा, और कुफर करने वालों का अंदाज भी, गोया कि एक बात को बड़ा जामे अंदाज ने बताया कि कुफर करने वालों का अंदाज ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दौर में एक रहा, और पैगम्बरों ने जो है वो हर दौर में ईमान, तवक्कुल, दीन इस्लाम के रास्ते पे चलना और सब्र करना जो है उसको उन्होंने, उनका तर्ज अमल ये रहा। तो पैगम्बरों का अमल एक उसवा है ना, और हर अमल करने वालों को अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए। तो आज के दौर में भी मुसलमान जो परेशान हैं मुख्तलिफ हालात से, तो उनके लिए ये आयात बड़ी खूबसूरत हैं कि इससे अपने दिलों में जो है वो ताकत पैदा करें। वकाल अल्लज़ीना कफरू, और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया था। अब आपस में ये बातचीत हो रही है ना, काफरों में, इनकार करने वालों में और रसूलों में। तो रसूलों का जवाब ये जब सुना, तो काफिर जो थे वो आपे से बाहर हो गए। क्या कहा उन्होंने अपने रसूलों से? कहा लनुखरिजन्नकुम मिन अर्दिना, कि या हम तुम्हें जो है वो जरूर बा जरूर अपने मुल्क से, अपनी जमीन से निकाल बाहर करेंगे, है ना। लनुखरिजन्नकुम, जरूर बा जरूर निकाल देंगे, मिन अर्दिना, अपनी जमीन से। अब जो है काफिर क्या करते हैं, धमकी देते हैं कि ये तवक्कुल, ये ईमान, ये सबर, इसको छोड़ो। ये जो हदायत का रास्ता है, ये जो सुबूल है, इनको छोड़ो। बहुत ज्यादा अपनी बुजुर्गी जो है इसको मत जताओ। अब क्या है, अब दो ही बातें हैं, या तो ये कि चुपचाप हमारे साथ रल मिल जाओ, है ना, चुपचाप हमारे पुराने दीन पर वापस आ जाओ, हमारे अबाओ अजदाद का जो दीन है उसको इख्तियार कर लो, वरना फिर क्या करेंगे हम, तुम्हें मुल्क बदर कर देंगे, हम तुम्हें जला वतन कर देंगे। औलतऊना फी मिल्लतिना, या तुम्हें जरूर बा जरूर जो है हम अपने दीन पर, जो हमारा दीन है, तुम्हें उस पर जो है वो वापिस आना होगा। और आप देखिए कि ये धमकी जो है ये अंबिया को हर दौर में मिली, कि मुखालफी ने हक, जब हक के दलाइल का जवाब नहीं दे पाते ना, जब वो देखते हैं कि हमारी सख्ती, हमारा मजाक, हमारे जो इस्तेहजा है, या हमारे जो निस्तर हैं, तीर हैं, हथकंडे हैं, हरबे हैं, चाले हैं, सारी हमारी नाकाम होगी, तो फिर वो आखिरी हरबा क्या इस्तेमाल करते हैं, या तो दीन में वापस आओ या फिर हम तुम्हें जला वतन कर देंगे। और यही कुछ जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई थी, आप घबराए हुए अपने घर में तशरीफ लाए। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा आपको अपने चचाजाद भाई वरका बिन नौफल के पास ले गई, और वरका बिन नौफल ने जब ये वाकया सुना तो कहा, अरे ये तो वही नामूस है, ये वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होता था। फिर साथ ही कहने लगे, काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब तुम्हारी कौम तुम्हें यहां से निकाल देगी, और मैं उस वक्त तुम्हारी कुछ मदद कर सकता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब से पूछा, क्या मेरी कौम मुझे यहां से निकाल देगी? और ये बात आपने क्यों पूछी थी? इसलिए कि आप तो कौम की आंखों का तारा, सादिक और अमीन, झगड़ों को चुकाने वाले, उनके लिए जज बनने वाले, है ना, और उनको तो आपसे बड़ी उम्मीदें थी, तो आपको बड़ी इज्जत की निगाह से देखती थी। तो इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत से पूछा, क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? वरका बिन नौफिल ने कहा, हाँ, क्योंकि जिस नबी ने भी ऐसी दावत पेश की, इसकी कौम उसे निकालती चली आई है। ये बुखारी की हदीस है। और चुनाचे मक्की दौर में एक वक्त वो भी पेश आया कि जब आपकी कौम ने जो है वो मिलकर ये प्लानिंग की, क्या प्लानिंग की, कि या तो आपको कैद में डाल दिया जाए, या आपको जिला वतन कर दिया जाए, या आपको कत्ल ही कर डाला जाए, है ना। तो गोया के अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को इन आयात में ईमान और सबर और तवक्कुल का दर्स दिया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है। अबुल अंबिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी भी तो यही है ना, है ना। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उन्होंने उनको ये धमकी दी। फाउहा इलेहिम रब्बहुम, तब उनके रब ने उन पर वही भेजी, लनुहलिकन्न ज़ालिमीन, कि हम इन जालिमों को हिलाक कर देंगे, वलनुस्किनन्नकुमुल अर्ज़ मिन बादिहिम, और उनके बाद तुम्हें जमीन में आबाद करेंगे। तो अल्लाह ताला ने ये वही जो है वो क्यों भेजी, क्योंकि वो ये समझे थे कि ये जमीन हमारी है ना, ये जमीन हमारी है। तभी तो उन्होंने कहा अर्दी ना, कि अपनी जमीन से निकाल देंगे। तो अल्लाह ताला ने वही भेज दी कि इनको तो हम हिलाक कर देंगे जो मेरी जमीन पर जो है वो जुल्म कर रहे हैं और मेरी जमीन पर जो है वो नाफरमानी कर रहे हैं, तो इनको तो हम तबाहो बर्बाद कर देंगे। और किनको आबाद करेंगे, तुम लोगों को, ईमान वालों को, अल्लाह ताला जो है वो अपनी जमीन पर जो है वो आबाद करते ही रहे और करेंगे। जैसे कि फिरौन और उसके साथी डूब गए और बनी इसराइल जो थी उसके पास सारे मिस्र की हुकूमत जो थी वो आ गई, मिन बादहिम, इनके बाद। ज़ालिका लिमन ख़ाफ़ मक़ामी व ख़ाफ़ वईद, ये इनाम है उसका जो मेरे हुजूर जवाबदेही का खौफ रखता हो। ये किस चीज का इनाम है, लिमन खाफा मकामी, जो मेरे सामने खड़े होने का खौफ रखता है, व खाफा वईद, और मेरी वईद से डरता हो। ये बहुत अहम बात है, ये आयत का जो आखिरी हिस्सा है ये पूरी बात का जो है वो निचोड़ है। और वो क्या है कि जिस शख्स को इस बात का खौफ हो कि अल्लाह के सामने जो है मुझे खड़ा होना है और मुझे जवाब देना है, तो फिर हो नहीं सकता कि वो शख्स जो है वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करे, है ना। अल्लाह ताला कुरान में बार बार ये बात बताते हैं कि वो लोग, जालिका लिमन खाफा मकामी व खाफा वईद, कि जो लोग मेरे सामने खड़े होने से, हिसाब किताब से, जवाबदेही से डरते हैं, तो वो लोग जो है वो क्या करते हैं, फिर वो मेरी नाफरमानी से बचते हैं, मेरे डरावे जो है ना उससे वो लोग जो है वो बचते हैं। तो गोया के जैसे सूरत नाजियात में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ इन्नल जन्नत हियल मअवा, कि जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया और अपने नफ्स को ख्वाहिश से रोका, यकीनन जन्नत उसका ठिकाना है। सूरत नाजियात आयत 40-41। तो आप देखें कि जिसको अपने रब के सामने खड़े होने से डर लगता है तो क्या करता है, फिर अपनी ख्वाहिशात नफ्स की वो पैरवी नहीं करता। उसका दिल तो चाहता है वो करे, लेकिन रब के सामने खड़े होने का डर उसको शैतान की बंदगी, उसकी ख्वाहिशात की पूजा, अपने नफ्स की पूजा करने से रोक देता है। इसी तरह सूरत अर-रहमान आयत 46 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वले मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया इसके लिए दो जन्नतें हैं। तो ईमान वालों का, मुसलमानों का सरमाया क्या है कि वो डर, ऐसा खौफ, ऐसा तकवा जो इंसान को अल्लाह की पकड़ से और अल्लाह के अजाब से जो है वो बचा ले। वस्तफ्तहू व ख्वाबा कुल्लु जब्बारिन अनीद, वस्तफ्तहू, और उन्होंने जो है वो फतह मांगी और उन्होंने फैसला चाहा, तो फिर फैसला कैसे हुआ, अखाबा और ना मुराद हुआ और मुंह की खाई, कुल्लो जब्बारिन अनीद, हर जब्बार ने, अनीद दुश्मन ने, जो दुश्मन हक था फिर इसने मुंह की खाई। अब यहां पर जो है आप उस बात को याद रखें कि कुफारे मक्का जो थे वो क्या करते थे, वो कहते थे ना, वो अपने रसूलों से बार बार ये मुतालबा करते थे कि जिस चीज की तुम हमें धमकी देते हो कि अजाब आएगा, अल्लाह की पकड़ होगी, तो फिर वो फैसला आ जाए ताकि पता चल जाए कि तुम सच्चे हो या हम झूठे हैं, है ना। मसलन जो है वो रसूलों ने भी ये दुआ की ना एक मौके पर, रब्बा नफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हकीफा व अंत खैरुल फातिहीन, सूरत अल आराफ आयत 89 है ना। तो रसूल ने फैसले के लिए दुआ की और अल्लाह का फैसला आ गया, और अल्लाह का फैसला क्या था कि उनको जो है वो बिल्कुल ही जो है वो पकड़ कर जो है वो खत्म कर दिया। फिर इसी तरह आप देखें कि गजवाए बदर के मौके पर मुशरिकीन मक्का ने भी तो इसी किस्म की आरजू की थी ना, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरत अल अनफाल आयत 19 में किया है। और क्या कहा था उन्होंने, अल्लाहुम्मा इनका नहाजा हुवल हक मिन इंदिका फअमतिर अलैना हिजारतम मिनस समाई अवेतिना बेअजाबिन अलीम। और इसके अलावा क्या किया था कि खाना काबा का पर्दा पकड़कर, अबू जहल ने ये कहा था ना कि उसको फतह देना जिसके साथ तू है, जो हक पर है, ए अल्लाह तू उसको फतह दे देना। तो गोया के वो इस तरह मुतालबात करते थे, और वो क्या करते थे कि पता चल जाए कि सच्चा कौन है। तो होता क्या था कि उनकी तदबीरें उनके खिलाफ ही उल्टी जो थी वो पड़ गई, है ना। तो यहाँ पे भी यही बात है कि ना मुराद हुआ हर जो है वो जाबिर, हर सख्त दुश्मन हक, हर अदावत और इनाद रखने वाला, मिन वराइही जहन्नम व युस्का मिन माइन सदीद। फिर इसके बाद आगे भी इनके लिए जहन्नम है। ये तो है ना कि दुनिया में भी खाब नाकामी, नामुरादी, जिल्लत, रुसवाई, शिकस्त, कत्ल उनके मुकद्दर ठहरा, और इसके आगे मिम्वराई, इसके आगे, इसके बाद है ना, उसके बाद क्या है, जहन्नुम है। फयुस्का और उनको पिलाया जाएगा, मिमाइन ऐसा पानी, सदीद सदीद जो के कच लहू का सा होगा, उनको ऐसा मशरूब जो है वो पीने के लिए दिया जाएगा जो कि पीप का पानी होगा। और इस सिलसिले में मुफस्सरीन जो हैं वो क्या बताते हैं कि दोजक का जो हौलनाक मंजर है उसका जिक्र यहाँ पे अल्लाह ताला कर रहे हैं कि जब वो बहुत ज्यादा प्यासे होंगे तो उनको पीप या पीप जैसा पानी, या जो जो भी जैसे जख्मों का जो कच लहू सा होता है ना, वो उनको पीने के लिए दिया जाएगा। क्योंकि सदीद जो है पीप और खून जो जहन्नमियों के गोश्त और उनकी खालों से बहरा होगा उसको कहते हैं। उसारत उसारत अहलन नार, जहन्नमियों के जिस्म से नुचड़ा हुआ, उसारा क्या रूट वर्ड है इसका, ऐन स्वादरा असर है ना, निचोड़ना, असीर नुचड़ा हुआ, और उसारा भी गोया के नुचड़ा हुआ। और बाज अहदीस में ये भी आता है कि ये सदीद इतना गर्म और खोलता हुआ होगा कि इनके मुंह के करीब पहुंचते ही इनके चेहरे की खाल झुलस कर गिर पड़ेगी, और इसका एक घूंट पीते ही इसके पेट की आंते पखाने के रास्ते बाहर निकल आएंगी। तो यहां पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बात बता रहे हैं कि जो सरकिश हैं, जो काफिर हैं, जो इनकार करने वाले हैं, उनके लिए ऐसा अजाब तैयार है, ऐसी जहन्नुम उनका इंतजार कर रही है कि उनको पीप कचलहू जख्मों का धोवन जब उनको पीने के लिए दिया जाएगा, और वो प्यास की शिद्दत में होंगे, और जो ही वो चाहेंगे कि उसको पिए, और क्या होगा कि उससे फिर होगा क्या, ये था जर्रा ओहू, वो उसको घूंट घूंट करके पियेंगे। जब कोई बहुत ज्यादा प्यासा हो तो घटाघट पीता है ना, लेकिन चूंकि वो मजबूर होंगे कि कुछ और है ही नहीं, और अब उसको घूंट घूंट करके पियेंगे, वला यकादु युसीहू, और वो उसको जो है वो मुश्किल ही से पी सकेंगे, और वो इसके करीब ही नहीं होंगे कि उसको घटाघट पी जाए, वला यकादु, और करीब नहीं है कि युसीहू कि उसको घटाघट पी जाए। आप तसव्वुर करें कि यहाँ पर जो जहन्नमी हैं उनकी जो है वो जिल्लत और उनकी रुसवाई, उनकी नाफरमानी जो दुनिया की जिंदगी में उन्होंने की है, अल्लाह ताला उसका अंजाम जो है वो उनको बता रहे हैं कि वो प्यास को बुझाना चाहते हैं लेकिन बुझा नहीं सकेंगे। اللهم اجرنا من النار، اللهم لا تجعلنا منهم، یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، موت ہر طرف سے ان پر چھائی بھی ہوگی، موت ہر طرف سے اس پر چھائی بھی ہوگی، من کل مکان ہر طرف سے، مگر وہ مرنے نہ پائیں گے، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، وہ مرنے نہیں پائیں گے. وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو ہوگا. تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہوگا کیا، کہ جو ہے وہ جب وہ پیئیں گے وہ پیپ، اور جو جہنم کا جو عذاب ہوگا وہ اتنا سخت ہوگا، تو اس وقت وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں موت ہی آ جائے، ہے نا. اور آپ اس بات کو یوں بھی سمجھیں کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب ان کو وہ پیاسے ہوں گے نا جہنم میں، اب وہ کچھ پینا چاہتے ہیں، تو فرشتے لوہے کے گرز سر پر مار کر زبردستی منہ میں ڈالیں گے، کیونکہ وہ کچ لہو، وہ پیپ، آپ سوچیں کہ اپنا ہی زخم بازو پر ہو یا کوئی پھوڑا خراب ہو جائے، اپنے ہی زخم سے جب وہ پانی بہتا ہے کتنی سمیل ہوتی ہے. خود انسان اپنی پٹی نہیں کرنا چاہتا، کجا یہ کہ کسی کا ہم کریں. اور پٹی کرنا یا اس پہ ڈریسنگ کرنا یا مرہم لگانا تو دور کی بات ہے، وہ پینے کو کہا جائے گا، ہے نا. آپس میں بعض اوقات بعض لوگ بہت محبت کرتے ہیں لیکن ایسے موقع پہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے پاس نہیں جانا، اس کے کمرے میں نہیں جانا، اس کے بستر پہ نہیں بیٹھنا، کہ اس سے جو ہے وہ بدبو آ رہی ہے. تو اب وہ جب پینا نہیں چاہیں گے لیکن پیاس ہوگی، تو فرشتے لوہے کے گرز سر پر مار کر زبردستی منہ میں ڈالیں گے. جس وقت منہ کے قریب کریں گے، شدت حرارت سے دماغ تک کی کھال اتر کر نیچے لٹک جائے گی، منہ میں پہنچ کر وہ گلے میں پھنسے گا. بڑی مصیبت اور تکلیف کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایک گھونٹ پیئیں گے، وہ اتنا اس کے اندر زہر اور اتنا تعفن اور اتنی وہ ایسی چیز ہوگی کہ پیٹ جو ہے، پیٹ کی آنتیں جو ہے نا کٹ کر باہر آ جائیں گی. آپ دیکھیں دنیا میں بعض اوقات ایسا کھانا ہم کھاتے ہیں جس میں مرچیں، مسالے، چلی بہت زیادہ ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ فوراً ہی جو ہے وہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے، فوراً وہ ہضم نہیں ہوتا، وہ جسم کا حصہ نہیں بنتا. سورت کہف میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، یہ سورت محمد ہے. اور سورت کہف میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. اور یہ موت کیوں پکاریں گے، موت کیوں پکاریں گے؟ اس سلسلے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جہنمی جو ہیں وہ آپس میں کیا کہیں گے کہ جنتیوں کو جنت اس لیے ملی نا کہ وہ اللہ کے سامنے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، آؤ ہم بھی اللہ کے پاس آہوزاری کریں. جہنم میں پھر وہ رونا شروع کریں گے، وہ روئیں گے، روئیں گے، خوب آہوزاری کریں گے، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر کہیں گے جنتیوں کو جنت ان کے صبر کی وجہ سے ملی، آؤ ہم صبر ہی کرتے ہیں، پھر وہ صبر کا جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ مظاہرہ کریں گے، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہے نا. تو اب وہ کیا کریں گے کہ وہ یعنی رونے کا بھی فائدہ نہیں ہے، کھا وہ سکتے نہیں، پی وہ سکتے نہیں، رہ وہ سکتے نہیں، جی وہ سکتے نہیں. دنیا میں انسان کہتا ہے نا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو موت کو پکاریں گے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ موت نہیں آئے گی. وَمَا هُوَ بِمَيِّت، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مرنے نہ پائیں گے. کیوں؟ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، کہ ان کے لیے جو ہے ایک سخت عذاب ہے، یعنی اب ان کو چھٹکارا نہیں ملے گا. ایک مسلسل عذاب ہے، ایک تسلسل ہے عذاب کا. اور اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا، کہ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم اس کی جگہ ایک اور کھال جو ہے وہ پیدا کر دیں گے، یعنی دوسری نئی کھال سے اس کو بدل دیں گے، لیکن عذاب نہیں ختم ہوگا. تو یہ آیات میرے اور آپ کی غفلت کی زندگی پر پانی کے چھینٹے ڈالتی ہیں، ہمیں بیدار کرتی ہیں کہ اے غفلت کے مارو، اے نیند کے ماتو، اے کفر، شرک اور منافقت کی زندگی بسر کرنے والوں، اٹھو اور سوچو تو صحیح کہ زندگی سے زیادہ موت قریب ہے. اور تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو اپنی بد عملیاں، اپنے حسد، اپنے جھوٹ، اپنے جو نافرمانی ہے، اس کا پھر اللہ کو کیا جواب دو گے؟ सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।